जय श्री साई राम। साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटती जावांगी। ओ साईया डोर हथों छड़ी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, बाबा तेरा दवारा है। मैनू इको तेरा आसरा ते तेरा सहारा है, बाबा तेरा सहारा है। तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटती जावांगी। साईया डोर हथों छड़ी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। ऐना चरना कमला नालों दूर हटाई ना, बाबा दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, बाबा पेचा लाई ना। कट गई ता सतगुर, जे कट गई ता सतगुर, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटती जावांगी। साईया डोर हथों छड़ी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, और मैं तेरी पतंग। मैनू मान इको तेरी रहमत दा, मेरे मान नू सतगुर तोड़ी ना। दर तेरे ते मैनो खाली मोड़ी ना। साहेब तुम मत विसरो, लाख लोग मिल जाए बहुत है तुम सम हमरे नाए। सतगुर मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। बाबा तेरे द्वार दा, हाथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर ते प्यार दा, बाबा सिर ते प्यार दा। फिर जन्म मरण दे केड़े, फिर जन्म मरण दे केड़े, तू मैं बच दे जावांगी, तू मैं बच दे जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। साया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सतगुर मैं तेरी पतंग, सतगुर मैं तेरी पतंग। मेरे सतगुरु
नवंबर 1469, 15th ऑफ नवंबर 1469 इस शुभ दिन गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ था, अर्थात उनका जन्म हुआ था। स्थान का नाम तलवंडी, जो अब पाकिस्तान में है, जिसको नानक साहब के नाम से जाना जाता है। कहते हैं प्रस्तुति गृह अर्थात डिलीवरी रूम में जब नानक साहब प्रकाशित हुए या उनका जन्म हुआ, वहां पर अलौकिक ज्योति भर गई, प्रकाश फैल गया। शिशु के मस्तक के आसपास तेज आभा फैल गई। चेहरे पर शांति थी, चेहरे पर सुकून था। माता पिता ने बालक को नाम दिया नानक। गांव के पुरोहित पंडित हरदयाल जी को बुलाया गया कि बालक के पीछे या उसके जन्म के पीछे कौन सा गुण रहते हैं, कि जिस प्रकार का जन्म हुआ प्रकाश फैल गया, ये तो जान गए थे कि कोई दिव्य आत्मा यहां पर आई है। नाना देव को पढ़ने के लिए पंडित हरदयाल जी के पास भेजा गया, परंतु नानक जी ने अक्षरों का अर्थ पूछा। पंडित जी समय नहीं जानते थे, जैसे अक्षर होते हैं ना, का खा गा घा या ए बी सी डी जो अल्फाबेट्स हैं, वो प्रत्येक अक्षर का अर्थ जानना चाहते थे। नानक जी ने सारी अक्षरों की एक पट्टी बना के, कविता बना के, रचना करके सुना दी। पंडित हैरान। पंडित हरदयाल को लगा कि मैं इस बालक को कुछ नहीं सिखा सकता, मुझसे कहीं अधिक जानते हैं। मौलवी कुतुबुद्दीन के पास भेजा गया। वहां नानक जी ने अलफ का पूछ बैठे। अलफ जब उर्दू में या अरेबिक में पढ़ाया जाता है, जैसे अंग्रेजी में बोलते ए बी सी, शायद उस भाषा में अलफ से आरंभ होता है। कहते हैं नानक थोड़े बड़े हुए, उनके पिता ने नानक जी को भैंस चराने के लिए भेज दिया। नानक जी भैंसों को, गाय भैंसों को खुला छोड़ के संयम आंखें मूंद के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, परमात्मा का ध्यान में चले गए। और दूसरी ओर ये जानवर पड़ोस के खेत में जाके उनके खेत को चर गई। जमींदार अब बोला हो गया, शिकायत करी। नाना जी बोले उसका खेत है, उसी के जानवर है, उसी ने चराया है, वो फिर खेत उगा देगा। एक बालक अगर इस प्रकार की बातें कर रहा है, उसके गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है एक बार नानक जी कहीं लेटे हुए थे, एक सांप उनके चेहरे पर फन फैला के खड़ा हो गया। ये घटना जिस स्थल पर हुई थी, वहां पर आज गुरुद्वारा है, मालजी साहब के नाम से जाना जाता है। पिता ने सोचा बालक को कोई ना कोई काम तो सिखाना चाहिए, पढ़ा तो पा नहीं रहे हम इसको, कुछ तो करें ही बड़ा होके। उसे खेती बाड़ी में लगा दिया। एक खेती बाड़ी करने को कहा गया। नाना जी बोले भाई वह सिर्फ सच्ची खेती बाड़ी करेंगे। शब्दों पे गौर कीजिएगा भाइयों बहनों, हम केवल सच्ची खेती बाड़ी करेंगे। जैसे कि मन जिसमें हल होगा, शुभ कर्म की कृषि होगी, या जिसकी खेती होगी, जो उपज होगी, जो लगाया जाएगा, श्रम अर्थात मेहनत, पानी या जल होगा, शरीर खेत होगा, परमात्मा का नाम बीज होगा, संतोष भाग्य होगा। शब्दों को समझिएगा, आप जो खेती करते हैं, खेत में हल को चलाते हैं, बीज डालते हैं, जल डालते हैं, खाद डालते हैं, जिस चीज का बीज होता है वो फसल आपको मिलती है। और यहां पर नानक जी कह रहे हैं अगर खेती करनी है तो शुभ कर्मों की खेती करो। शरीर आपका खेत है, इसमें पानी डालिए, कौन सा, मेहनत का, बीज डालिए किस चीज का, परमात्मा के नाम का। इस शरीर से असार अपनी जीभ से परमात्मा के नाम को जपिए, मेहनत कीजिए, अच्छे कर्म की खेती कीजिए, और उसका जो उपज, उसकी जो उपज होगी, उसका जो फल होगा, वह संतोष होगा, भाग्य होगा। पिता पिता होते हैं, पिता को लगे मेरा पुत्र कुछ करने लायक नहीं है, क्या किया जाए, चलो दुकान खोल देता हूं उसको। जैसे कि प्रत्येक पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे भी आगे जाए, कुछ तो कमाए धाए, कुछ तो काम करे, उसका जीवन आगे आसान रहे। तो पिता ने क्या किया, अपने पुत्र के लिए एक व्यापार आरंभ कर दिया, दुकान खुला दीजिए। कहा जाता है उन्होंने पुत्र को 20 रुपए दिए, उस जमाने में 20 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी। बोले बेटा जाओ शहर जाके दुकान के लिए सौदा लेके आ जाओ, उन्हें लाहौर भेज दिया। कहते हैं नानक जी सौदा खरीदने तो गए, लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत से साधु संत मिल गए, उन्होंने सब साधु संतों को भरपेट भोजन करवा दिया, सारे प्यासे वहां खर्च हो गए, वो खाली हाथ घर लौटकर आ गए। पिता बड़े क्रोधित हुए। नानक जी बोले भाई मैं तो सच्चा सौदा करके आ रहा हूं, शब्दों में फिर गौर कीजिएगा, मैं सच्चा सौदा करके आ रहा हूं, आपने कहा सौदा लेके आओ, आप शहर में जाते कुछ सामान लेके आते, गांव में आके बेच देते, आपको मुनाफा होता, प्रॉफिट होता, लेकिन यहां पर नानक जी कह रहे मैंने तो पैसे व्यर्थ नहीं किए, पैसे मैंने अच्छी जगह लगा दिए हैं, गरीबों को साधु संतों को भरपेट भोजन करा दिया है, वह एक सच्चा सौदा है, दिस इज द ट्रू बिजनेस। पिता ने नानक को उनकी अपनी बहन नानकी जिसके पति एक दीवान के पास काम करते थे या दीवान थे, उनके वहां कोई काम पे लगवा दिया, शाही भंडार की देखरेख करना। यूं समझिए एक फूड स्टोरेज है, शाही भंडार, उसकी देख रेख करना। एक बार वह अनाज तोल कर ग्राहक के पात्र में डाल रहे थे और साथ साथ गिनती कर रहे थे 1, 2, 3। जब उनकी गिनती 13 पर पहुंची, 13 के बाद वह 13 ही बोलते रह गए, 13 13 13, जैसे कि मैं आपको एक कुछ चेंज दे रहा हूं, पैसे वापस कर रहा हूं, सामान आपने मुझसे सामान खरीदा मान लीजिए और आपने मुझे पैसे दिए, मैं आपको पैसे वापस कर गिन कर दे रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 पे आ गए, 14 आता है, 15 आता है, लेकिन नानक जी यहां पर 13 13 ही बोलते रह गए, उनकी समाधि लग गई, उनकी संख्या 13 पे जाके रुक गई। नानक जी को प्रतीत हुआ कि 13 पर आकर हर चीज समाप्त हो जाती है, यही तो हमारे जीवन की मंजिल है। जरा विचार कीजिएगा, हम भगवान की आरती करते क्या बोलते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। हम परमात्मा से नित्य रोजाना एवरी डे ये बात कह रहे हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। हमने परमात्मा को तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, सब झूठी बातें हैं। तन दे दिया, तन में थोड़ी तकलीफ आ जाए, परमात्मा से आप शिकायत करते हैं, परमात्मा मेरे शरीर में तकलीफ हो रही है, मुझे सहायता प्रदान करें। मन पीड़ित होता है, मन उदास होता है, परमात्मा को याद करते हैं, मन वासनाओं से भरा भगवान को याद करते हैं, मन इच्छाओं से भरा हुआ है परमात्मा से फरियाद करते हैं, भगवान मेरे को ये चीज दिलवा दो। अगर धन सारा परमात्मा का है तो धन परमात्मा को क्यों नहीं देते हैं? हम अपने लिए यूज करते हैं, अपने लिए प्रयोग में लाते हैं, ये केवल कोरे शब्द रह गए हैं। और नानक यहां पर कह रहे हैं 13 13 सब कुछ तेरा, मेरा क्या लगता है, मेरा क्या है, क्या नथिंग बिलोंग टू मी। विचार कीजिएगा, ये भी कहा जाता है एक बार एक शमशान घाट में जाकर ध्यान में लीन हो गया, किसी ने बोला भाई तुम यहां पर आके क्यों बैठे हो, ये मरगट है, शमशान घाट है। बोले एक दिन चार कंधों पे बैठ के यहीं तो आना है, मैं खुद ही चल के आ गया हूं, लोग शमशान घाट में जाने से डरते हैं क्योंकि मृत्यु के पश्चात आपके संबंधी, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार आपके शरीर को चार कंधों पर रखकर, चार कंधों पर उठाकर शमशान लेकर तो जाएंगे। कहा जाता है एक बार नदी में नहाने के लिए गए और तीन दिन तक वापस निकले नहीं। लोग परेशान, लोगों को लगा शायद नानक जी डूब गए हैं, बह गए हैं पानी में। लेकिन तीन दिन के बाद वे बाहर निकले, एक वृक्ष के नीचे समाधि लगा के बैठ गए। लोगों ने कहा आप कहां थे, आप कौन हैं, आप क्या हैं? हजारों प्रश्न उम्र पड़े। कोई इंसान तीन दिन पानी के भीतर जाके बाहर आ जाए निश्चित है, लोग पूछेंगे। कहते हैं नानक जी के मुख से अनायास निकला एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। एक ओंकार सरल शब्दों में देयर इज ओनली वन गॉड, एक ओंकार, ओंकार को परमात्मा की उपमा दी गई है। सतनाम, सत्य उसका नाम है और ट्रुथ इज अलोन गॉड, ट्रुथ अलोन इज गॉड ये कहना चाहिए, सत्य ही परमात्मा है। कर्ता पुरुष करने वाला वही है, गॉड इज द सोल डूअर। निर्भव जिसे किसी से डर नहीं है, ही नॉट केयर्ड ऑफ एनी वन। निर्वैर हु हैज नो एनिमी, किसी से बैर नहीं है, किसी से शत्रुता नहीं है। अकाल मूर्त जो एटर्नल है, गॉड इज एटर्नल जो सनातन है, जिसका कोई अंत नहीं है, ना आरंभ है ना अंत है। अजूनी जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जब जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगी। अजूनी हु इज अनबॉर्न। साय भंग इसका अर्थ है सेल्फ अफल्जन, जिसकी अपनी आभा है। जिस प्रकार से सूर्य अपना प्रकाश धरती को देता है, चंद्रमा को देता है, लेकिन उसका अपना प्रकाश है, इस प्रकार परमात्मा सेल्फ अजल्जेंट है, उसका अपना प्रकाश है। गुरु प्रसादी, गुरु की कृपा से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। वह एक है, ओंकार स्वरूप है, वह सत्य नाम वाला है, करतार है, आदि पुरुष है, भय और बैर से रहित है, वह तीनों काल से रहित स्वरूप वाला है, वह योनी और स्वयंभू है और गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। लोगों ने कहा हो न हो, ये कोई साधारण मानव नहीं, ये अवतार है। नानक जी ने परमात्मा के नाम के रस से सबको तृप्त कर दिया। ये जपजी साहब का मंत्र है, जहां से जपजी साहब आरंभ होती है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरु प्रसादी। कहते हैं जहां पर उन्होंने जपजी साहब दी थी वहां पर गुरुद्वारा बनना चंद तहार नाम है मेरे ख्याल से, नदी के किनारे। 18 वर्ष होंगे, माता पिता ने उनका विवाह करा दिया मूलचंद खत्री के पुत्री सुलक्षणा के साथ। नानक जी के जो पुत्र हुए चंदू और लक्ष्मीदास। लोक कल्याण के लिए नानक जी ने संन्यास ले लिया, भ्रमण करने लग गए। उनके दो साथी थे मर्दाना और बाला, मर्दाना मुसलमान थे और बाला हिंदू थे। जगह जगह जाके भजन गाते, कहते एक बार वह कहीं अतिथि बने हुए थे और नानी जी बोलते थे कि कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, सब इंसान है। तो नवाब जी ने कहा कि आप मस्जिद में चल के नमाज अदा करेंगे फिर आप? नाना जी बोले हाँ मैं चलूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा। कहते हैं मस्जिद पहुंच गए, नवाब सामने नमाज पढ़ी, नाना जी चुपचाप बैठे रहे। नमाज खत्म हो गई तो बोले क्या बात है, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? नाना जी बोलते हैं आपने नमाज पढ़ी क्या? नमाज पढ़ते पर आपका मन तो काबुल में घोड़े खरीद रहा था, और मौलवी जी हैं वो खेत की फसल काट रहे थे। नमाज नहीं, मन की एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन पावर चाहिए, कॉन्टेम्पलेशन पावर चाहिए परमात्मा के ऊपर। हमारे से ऐसा नहीं होता है, हम सुबह नित्य पूजा करने बैठते हैं लेकिन जल्दी जल्दी में करते हैं, ध्यान कहीं और होता है। कई कहानियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं। कहते हैं एक बार हरिद्वार में गए हुए हैं, वहां पर देखा कि कोई लोग जल लेके सूर्य की ओर मुंह करके जल चढ़ा रहे हैं। उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? वे कहते हैं मैं पितरों को जल दे रहा हूं। कहते हैं नाना जी ने एकदम से जल लेके पश्चिम दिशा में वेस्ट दिशा में देने लग गया। लोगों ने वहां को जल दे रहे, सूर्य तो यहां पर है। कहते नहीं तुम्हारा जल वहां पहुंच जाए, मैं अपने खेतों को जल दे रहा हूं। तो उन्होंने एग्जैक्टली बताने का प्रयास किया कि हम जो रिचुअल फॉलो करते हैं उसके पीछे अर्थ को समझ के सही तरीके से करो या ना करो। कहते उन्होंने कई यात्रा करी, अरब में गए, ईरान गए, इराक गए, अफगानिस्तान गए, भूटान गए, नेपाल गए, तिब्बत गए, सब देशों में जाके सत्य का प्रचार किया। अंत में करतारपुर में आके बस गए, वहां उन्होंने लंगर और सत्संग की प्रथा स्थापित की। लंगर क्या है? जब सारे भाई बहन सारे भक्त इकट्ठे मिलके खाना खाते हैं, यहाँ कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं है, सब जमीन पे बैठेंगे, एक जैसे बैठेंगे, एक जैसा खाना मिलेगा। और सत्संग ताकि अब सब मिलके इकट्ठे गाएं, भजन गाएं। आज हम नगर से कीर्तन करते हैं जगह जगह जाके, वहां से हम प्रथा हुई थी, प्रभात फेरी भी कहा जाता है, सुबह उठ के लोग भजन गाते हैं, अपने गली मोहल्ले का चक्कर लगाते हैं। कहते हैं अपने शिष्य गुरु अंगद देव जी को उनका नाम दिया, उनको ज्योति दी, उनको शिक्षा दी, और संयम 7 सितंबर 1539 को 70 वर्ष की उम्र में अपने शरीर को त्याग दिया। समय कम है तो पूरी बात तो नहीं हो पाएगी, लेकिन उनका संदेश रहा है नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत का भला। भक्ति द्वारा मानवता को ऊंचा उठाना, सबका भला करना, सबका कल्याण करना, धर्म का यही एक रास्ता है, जिसका सरल भाषा में है लव ऑल सर्व ऑल। जय श्री साईं राम।